विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि महाराज की। उत्तम क्षमा मातो आर्जो भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव। और इसके बाद हमने अपनी भावनाएं पवित्र करें, हमने अपने जीवन को पवित्र करने के उपाय करे। इसके बाद जो जीवन में पवित्रता आई, आज उस पवित्रता के एहसास करने का दिन है। सारे प्रयास हमारे उस समय सफल होते हैं जब हम अपने अस्तित्व का जो वास्तविक बोध है उसे कर पाते हैं। आकिंचन अपने अस्तित्व के बोध की प्रक्रिया है, टू बी इन ऑन सेल्फ, अपने में रहने की प्रक्रिया है। कल तक अपने में रहने के लिए जो कुछ भी अपने से पृथक था उसे सबको दे देने का मन था, दिया भी दान की तरह भी और छोड़ा भी, अपने को उससे पृथक भी किया। आज तो सिर्फ उस पृथक होने के बाद के एहसास की बात है। और किसी चीज की अनुभूति अगर करनी हो तो उसे कथन नहीं किया जा सकता। या किंचन और ब्रह्मचर्य दो ऐसे धर्म हैं जिनके बाबत कहने के लिए शेष नहीं बचता। फिर भी कुछ थोड़ी सी चीज़ें, कुछ थोड़े से इशारे किए जा सकते हैं, वही अपन को आज समझ लेना। मुझे अपने जीवन की एक बहुत पुरानी घटना याद आती है। सन 86 की बात है, चतुर्मास था, गढ़ाकोटा में एक और मुनि महाराज जी हमारे साथ थे, दो ही जन थे। उस समय एलक जी महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में थे। ये मेरे अपने जीवन का पहला चतुर्मास था जबकि आचार्य श्री हमारे साथ नहीं थे, प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष में तो कभी दूर हो ही नहीं सकते। और ऐसा हुआ कि बहुत तेज बुखार आना शुरू हुआ। मैं अपने एहसास की बात बता रहा हूँ आपको, आपकी जिंदगी में भी ऐसा शायद किसी क्षण हुआ हो, टैली कर लीजिएगा, वो क्षण आकिंचन के क्षण। और बहुत अधिक पुकार था, इतवार का दिन था, प्रवचन ऐसे ही मान लीजिएगा कि जैसे हम वहाँ ठहरे हुए हैं और यहाँ प्रवचन होना है। मना भी किया जो मुनि महाराज जी थे उन्होंने कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए हम भी नहीं जाते हैं प्रवचन करने। उनका नहीं, बहुत लोग आए हैं, इतवार है, करिएगा। गए वो, ब्रह्मचारी जी ने भी मना किया कि हम नहीं जाएंगे। हमने कहा इतवार को सुन लो, कम से कम धर्म ध्यान होगा, बाकी तो बुखार तो अपनी जगह है। इनको भी भेज दिया। अब मैं सिर्फ अकेला रह गया। और इतना बड़ा वो मंदिर था कि जिसमें कोई ऐसा सिर उठा करके देखे तो बहुत दूर तक खाली नज़र पड़ता था। चारों तरफ परिक्रमा है, उसे एक परिक्रमा में लेटे हुए हैं मानिए। और फीवर बढ़ना शुरू हुआ, बहुत अधिक फीवर बढ़ा तो संभालना मुश्किल हुआ अपने आप को। चटाई में से जैसे तैसे करके एक बार मन हुआ कि बाहर देखूं, शायद कोई हो जिसे आवाज़ दे करके बुलाया जा सके। आदमी बाकी सब बर्दाश्त कर लेता है, पीड़ा के समय किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता उसे होती है। बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम अभी बहुत ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचे हैं तब तो आवश्यकता होती है। ये बात अलग है कि हम फिर जब कोई ना हो तो शांत रह जाएं या आकुल विकल हो जाएं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो क्षण भर के लिए लगा कि कोई होता, उससे दो आखिरी बातें मैं कह देता, क्योंकि अब लगता नहीं है कि जीवन शेष रहेगा। ऐसी स्थिति उस समय थी। मेरे पास पेन कागज निकट था, मैंने लिखा था उस क्षण और एहसास किया था इस बात का कि अभी तक कहा जरूर मैंने कि कोई किसी का नहीं है। आज ये एहसास हो रहा है कि सचमुच कोई किसी का नहीं है, इसलिए क्योंकि सबको अपना सुख दुख अकेले ही भोगना पड़ता है। धीरे धीरे इस एहसास के साथ, बुखार तो आया था सो उतर गया, पर यह एहसास हमेशा के लिए बना रहा कि घृणापूर्वक ये कह पाना बहुत आसान है या राग पूर्वक ये कह पाना बहुत आसान है, लेकिन राग द्वेष दोनों से परे होकर के ये कह पाना कि सचमुच अपने सुख दुख को हमें अकेले ही भोगना है, ये यकीनचन की उपलब्धि है। जितने क्षणों में आप इस बात का एहसास करें, आपके पास भी यकीनचन में धर्म उतने क्षण के लिए हो सकता है, लेकिन परिणामों की निर्मलता के साथ ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरे दिन के बाद से फिर लोगों ने बहुत आग्रह किया कि आपके साथ मुश्किल यही है कि जब बीमार होते हैं तब थोड़ा बहुत भी विश्राम नहीं करते हैं, अब आप जरा विश्राम करिए। मैंने कहा अब तो विश्राम संभव ही नहीं है, मौत मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने की आवाज़ कितना मधुर है मेरे द्वार पर आकर मुझे पुकारने का तुम्हारा अंदाज कि चलो। ऐसे ही किसी दिन हमारे साथ सबके साथ घटित होगा, लेकिन हम उस दिन ये नहीं कह पाएंगे कि ठीक है हम चलते हैं, अगर समय पूरा हो गया है तो चलते हैं। ये हम कह सकें किसी भी क्षण हमारी इतनी तैयारी हो कि हम अपना सब कुछ काम कर चुके हों और जिस क्षण भी यहाँ से जाने का हो हम तैयार खड़े ही मिलें कि बस चलो यदि समय आ गया है, वो व्यक्ति आकिंचन का अनुभव कर सकता है। जो जितना अधिक जुड़ा हुआ होगा वस्तुओं से, जितना अधिक उसका मोह होगा चीज़ों से, वो व्यक्ति उतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा सब कुछ से मुक्त होने के लिए। इसलिए आवश्यक है कि हम समझें अलोननेस क्या चीज़ है, अकेलापन क्या चीज़ है, लॉन्लीनेस क्या चीज़ है। दो अलग अलग अर्थ हैं, अंग्रेजी के दो अलग अलग शब्द हैं। अलोननेस जिसमें कि हम सफ़र करते हैं, जिसमें कि हम फील करते हैं कि काश कोई होता, कोई हमारा मित्र होता, आज हम बहुत अकेले पड़ गए हैं, ये अलोननेस है। जिसमें किसी के होने की आशा है, ये तो बहुत सहज है, ऐसा तो हर एक को होता है। एक दूसरी स्थिति भी बनती है जिसमें हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तब भी हम कहते हैं कि यहाँ कोई हमारा नहीं है। लेकिन तीसरी लॉन्गलीनेस, यहाँ हमारा कोई हो कैसे सकता है, आई एम सफिशियंट फॉर योर सेल्फ, एक इनर फुलफिलमेंट, एक आत्म संतोष, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमारे पास हो कि हम अपने लिए पर्याप्त हैं, हमारे लिए किसी और दूसरे के होने न होने की कोई तकलीफ नहीं है। होने की तकलीफ भी नहीं है और नहीं होने की तकलीफ भी नहीं है, दोनों तकलीफें हुआ करती हैं। किसी के होने से भी आदमी तकलीफ पाता है, किसी के नहीं होने से भी आदमी तकलीफ पाता है। एक ऐसी स्थिति जबकि किसी का, चीज़ों का या व्यक्ति का या वस्तुओं का, किसी का भी होना नहीं होना जब कोई मायने नहीं रखता है, इवन अपने शरीर का होना नहीं होना जब कोई मायने नहीं रखता, तब वो जो स्थिति बनती, तब वो जो फील करते हैं हम, वो कहलाता है लॉन्गलीनेस। वो अकेलापन, वो एकाकीपन, वो निर्द्वंद और निश्चिंत दशा, वो है अकिंचन का अनुभव। ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आसानी तब होगी जबकि आप निर्द्वंद होंगे, जबकि आप स्वावलंबी होंगे। जो व्यक्ति जितना अधिक परावलंबी होता है, वो व्यक्ति उतना अधिक द्वंद से गुजरता है, वो उतना ही अधिक अनिश्चिंत रहता है। निश्चिंतता, अगर हम अपना काम अपने हाथ से करते हैं तो हम निश्चिंत हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन अगर हम दूसरे के आलंबन लेते हैं, दूसरे का सहारा लेते हैं अपने हर कार्य में, एक कटोरी भी यहाँ से उठाकर रखनी है तो एक नौकर चाहिए, कपड़े पहनना है तो एक नौकर चाहिए, सोफर चाहिए जो कि दरवाज़ा खोले तब साहब कार में बैठेंगे, अगर इतना परावलंबन है तो मानिएगा कि आप इस तरह की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। जितना व्यक्ति स्वावलंबी होगा उतना निर्द्वंद होगा, जितना निर्द्वंद होगा उतना निश्चिंत होगा, उतना ही अधिक वो आकिंचन का अनुभव करेगा। कहीं कोई शिकायत उसके जीवन में शेष नहीं रह जाएगी, जो कि आकिंचन धर्म को स्वीकार कर लेता है। किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि वो अपने हाथ से हर काम करने के लिए तैयार है, स्वावलंबी है। द्वंद कई तरह के होते हैं। एक बहुत बड़ा साधु था, और द्वंद की बात करूंगा अभी आपसे, पहले एक चीज़ समझ लें कि अलोननेस क्या चीज़ होती है। बहुत बड़ा साधु था, उसके पास में एक राजा आया कि वो कोई शांति का उपाय चाहता। उसने कहा मिलेगा शांति का उपाय, पर अकेले होकर के आना। उसने कहा अकेले होकर के, अकेले तो आया हूँ। नहीं, अभी अभी अकेले होके नहीं आए, सब कुछ छोड़ करके आओ। देखो तो सबको साथ में लेकर के आया, पूरी लॉबी साथ में आई है, मंत्री आया है साथ में, पुरोहित आया है, इसको छोड़ करके आओ, अकेले आना। उसने कहा ठीक आएंगे। सबको छोड़ करके वो अकेले होकर के आया, पर साधु जानता था कि अभी अकेला नहीं हुआ है, भीतर से अकेला नहीं हुआ, बाहर से अकेला होके आया है। कोई बात नहीं, आश्रम में झाड़ू लगाने का काम करो। बड़ा अजीब लगा सबको, इतना बड़ा राजा और आश्रम में आनंद की खोज के लिए आया और कहते झाड़ू लगाओ। लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हैं आप। उसने कहा जो इसके योग्य है वही इससे करवा रहा हूं। राजा ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, कचरा फेंकता था झाड़ू लगा करके, दूर तक जाता था कचरा फेंकने। कचरा फेंकने जा रहा था और अचानक एक आदमी टकराया, तो मालूम उसने क्या कहा, जबकि वो सब चीज़ों से मुक्त होकर आया था। उसने कहा कि क्यों, फूट गई क्या, 15 दिन पहले तो सब ठीक दिखता था, अब इतना बड़ा आदमी नहीं दिख रहा हूँ मैं। बाकी लोगों ने आकर के खबर दी कि उसने ऐसा जवाब दिया है, तो साधु ने कहा कि देखो मैंने कहा था ना अभी झाड़ू लगाने लायक ही है, अभी अपने को राजा मान रहा है, अभी ज्ञानी ही उसके अंदर कि मैं राजा हूं, अभी ठहरो, इसलिए तो कहा था कि अभी झाड़ू लगाने दो, अभी बाहर की सफाई है, अभी भीतर की सफाई तो बहुत दूर की, अभी बाहर की सफाई करने दो उसको। फिर 15 दिन के बाद एक दिन फिर टकराया, तब की बार कुछ नहीं बोला, सारा कचरा नीचे गिर गया था फिर भी कुछ नहीं बोला, जिससे टकराया था उससे सिर्फ घूर करके देखा। अभी भी शेष है, अभी घूर के देखना शेष है, अभी और लगाओ झाड़ू। और 15 दिन के बाद जब एक दिन राजा बना हुआ वो साधु, सॉरी साधु बना हुआ वो राजा, ऐसा कहना चाहिए था, उल्टा कह दिया मैंने, वो साधु बना हुआ राजा जब रास्ते से जाता था तो अचानक कचरे से कोई टकराया और सारा कचरा नीचे गिर गया। उसने देखा तक नहीं कि कौन टकराया था, धीरे से कचरा फिर से बटोरा, टोकरी में भरा, आगे बढ़ गया। साधु ने कहा कि अब तुम अकेले हो गए, अब ये एहसास भी खत्म हो गया कि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ, कोई भी टक्कर मार सकता है, कचरा था गिर जाता है अगर तो उसे उठा करके फिर से आगे बढ़ जाना चाहिए। इस तरह के एहसास से, जबकि हम अपने भीतर हर प्रकार की जितनी हमने अपने भीतर उपाधियाँ कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ या कि मैं वो हूँ, ये सारी चीज़ों से जब हम मुक्त हो जाते, ये भी एक द्वंद्व है। इस द्वंद्व के रहते हुए आदमी बहुत पराश्रित हो जाता, बहुत दीनहीन हो जाता है। जो जितना दूसरे पर डिपेंड है वो उतना दीनहीन मालूम पड़ता है। कभी किसी भी गुलाम आदमी को तकलीफ नहीं होगी जितनी कि मालिक को तकलीफ होगी, नौकर को उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी मालिक को होती है। अगर एक दिन नौकर नहीं आए तो मालिक को तकलीफ है, नौकर को क्या तकलीफ है, और अच्छा रहा एक दिन की छुट्टी मिल गई। कौन किससे बंधा हुआ है, कौन किसकी वजह से द्वंद्व में है। एक दिन के लिए हम जिन चीज़ों के आश्रित हो जाते हैं, वे चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, वो व्यक्ति हमें नहीं मिलता है, तो हम बहुत अनइजी फील करते हैं, हमारा ईज ख़त्म हो जाता। बस जहाँ हमारा ईज ख़त्म होता, जहाँ हमारी सहजता ख़त्म हो जाती है, वहीं तो हम द्वंद्व से घिर जाते हैं, वहाँ हम अपने अकिंचन में धर्म से विमुख हो जाते हैं। कोशिश करिएगा सेल्फ डिपेंड होने की, स्वावलंबन की। गांधी जी ने हमेशा कहा, कपड़े अपने बनाए पहनो ना, उस स्याही से लिखो जिसे तुमने अपने लिए बनाया, उस कागज पर लिखो जो तुमने अपने हाथ से बनाया। जो कुछ भी यहाँ हो सकता है, अज्ञेय जैसे लोग जिनका कि लोग नाम लेते हैं, अगर उन्हें घर में रहे भी तो अपने लिए खुद घर बना के रहे, चप्पल जूते पहने तो अपने लिए खुद बना करके पहने, एक एक रॉ मटेरियल से लेकर के कंस्ट्रक्शन तक, वो व्यक्ति निश्चिंत हो सकता है, वो व्यक्ति निर्द्वंद हो सकता है। द्वंद भी कई तरह के होते हैं। मैं साइकोलॉजी पढ़ता था, जब 3 तरह के द्वंद की बात आई थी, इनसे भी बचना चाहिए तब निश्चिंतता हो सकती है। पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट द्वंद, अंतर द्वंद। बाहर के द्वंद तो आदमी मिटा देता है, भीतर के द्वंद चलते रहते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, दो चीज़ों के बीच में डमाडोल होता रहता है। दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ पाई जा सकती है एक बार में, लेकिन सोचता है कि ये पालूँ कि ये पालूँ, न ये छोड़ी जाती है न ये छोड़ी जाती है, जबकि ये तय है कि एक को ग्रहण करेगा तो एक छूटेगी। सपोज करो, हालांकि अच्छी चीज़ नहीं है, इन दिनों में उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी चर्चा करने में क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। सिनेमा लगे हों 2 थिएटर में, बढ़िया से लगे हों, और एक ही शो बाकी रह गया हो, अब क्या करोगे, आप दो ही तो देख नहीं सकते अलग अलग जा करके, एक शो में दोनों बाकी बचे हुए हैं और एक शो है, आपको कोई एक चुनना है, क्या करिएगा, टॉस कर लीजिएगा। एक कोई पाया जा सकता। पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, इसमें भी व्यक्ति बहुत भ्रमित होता है, दो चीज़ें एक जैसी दिखाई पड़ती हैं, दोनों में से किसे चुनना है। ये जो चुनाव है, ये जो च्वाइस है, वही तो द्वंद खड़ी करती है। एक दूसरे तरह की च्वाइस है जो कि फिर से एक द्वंद में डाल देती है। अवेयरनेस हो अगर, लेकिन च्वाइसलेस अवेयरनेस, हमें कोई चुनाव नहीं करना है, चुनाव से रहित जागृति है, वो आकिंचन है। फिर देखिएगा कैसी च्वाइस है। नेगेटिव नेगेटिव एक द्वंद पैदा होता जब हमें च्वाइस करना पड़ती है, जैसे कि आज के विद्यार्थी अक्सर किया करते हैं कि पढ़ना भी ना पड़े फेल भी ना हो। नेगेटिव नेगेटिव, पढ़ना भी ना पड़े और फेल भी ना हो। अब एक तो कुछ भी होगा, या तो पढ़ना पड़ेगा और फिर या फिर फेल होना स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव कन्फ्लिक्ट भी दूर हो सकते हैं, इनमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आदमी किसी एक चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो फेल होने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर मुझे पास होना है, अगर मुझे सफलता पानी है, तो मुझे मेहनत भी करनी होगी। लेकिन तीसरे तरह का द्वंद्व, तीसरे तरह की च्वाइस जो कि आज बहुत अधिक है, नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, संसार के सुख की आकांक्षा भी है एक तरफ कि ये भी न छूटें, और दूसरी तरफ लोग सन्यासी भी कहें ये भी हो जाए, दोनों चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट। संसार के सुख वैभव को भी मैं न छोड़ूं, और दूसरी तरफ मुझे सन्यास का आनंद भी मुझे मिल जाए वहीं बैठे बैठे गद्दे पर, इस तरह के नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट में आज बहुत लोग हैं इस द्वंद्व में। इस तरह की हमारी च्वाइस है, दो में से एक कोई चुनना होगा, या तो संसार की चीज़ों का सुख चुनना होगा, या फिर जो अपने आत्मा का सुख है उसे चुनना होगा। इस तरह के द्वंद्व से मुक्त होकर के ही हम वास्तविकता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लिखा है कि जो जितना ज़्यादा निर्द्वंद्व, किसी तरह की च्वाइस में नहीं पड़ा, हमने शुरू दिन कहा था कि जो कुछ भी मिला उस सब को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। देखना, जो कुछ भी मिला उसे इसलिए स्वीकार कर लिया कि मेरा हो कब से गया, मिल गया है इसलिए स्वीकार है। तब फिर ऐसी स्थिति अगर बन जाती है तब अकिंचन धर्म बहुत आसान हो जाता, वरना तो बहुत कठिन स्थिति है। एक और बहुत छोटी सी घटना जो मुझे याद आती है आपसे, वो और थोड़ी सी बात कर लूँ और बात पूरी हो जाएगी। असल में जितनी भी हमारी आसक्तियाँ हैं, अपनापन के बारे में भी बहुत थोड़ी सी चीज़ क्लियर कर लें। मेरापन और अपनापन में बहुत फ़र्क है। मैं और मेरापन ये खतरनाक है, अपना और अपनापन खतरनाक नहीं है। अपने से आशय आई से है, और मैं से आशय ईगो से है। ईगो बुरी चीज़ है। अपना हो जाना, बहुत अपने निकट हो जाना, और वही निकटता सबके लिए बांटना, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, और शायद यही चीज़ सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन मैं और मेरेपन की जहाँ तेरे और मेरे की बात आती है, वो हमें मुश्किल में डाल देती है। उससे बचने की कोशिश करिएगा। जहाँ पर कहीं ये कहा जाए कि अपनेपन से बचिए, वहाँ पर आशय यही लेना कि मेरेपन से बचने का है, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ेंगे। अपनापन और आत्मीयता, ये दो चीज़ें तो हमें संसार में भटकाने वाली नहीं है, इतना अवश्य है कि थोड़ा सा अटका जरूर देती है, भटकाती नहीं है। हमें पहले ये आत्मीयता सीखनी पड़ेगी। हमें पहले अहिंसा के लिए तो अपनापन सब तरफ देखना पड़ेगा कि जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही तो सामने वाले की आत्मा है। और एक आत्मीयता भगवान से भी बनानी पड़ेगी, अपने परमात्म पद से आत्मीयता होनी पड़ेगी, अपनापन उससे भी होना पड़ेगा। इसलिए जहाँ कहीं भी ये बात आए उससे थोड़ा सा ये अर्थ मत निकालिए। और एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, उपयोग करिए। कल तो शायद विश्राम करेंगे, मेरे ख्याल से सब लोग विश्राम करेंगे। आज पर्युषण का आखिरी दिन मानने ले रहा हूँ, एक दिन पहले ही अंतिम कह सकें। ऐसा कहाँ हमारा जीवन हो पाता है, कल मृत्यु आने को है और आज मैं कह सकूँ कि आओ शान से आओ, मैंने आज कल तक का काम आज पूरा कर लिया है, मैं निश्चिंत हूँ। अगर इतना हम इतना अलर्ट हो जाएं, फिर देखिएगा कैसे हमारे जीवन में धर्म उपलब्ध नहीं होता। हमें द्वंद्व में डालने वाली चीज़ों को हम अपने चारों तरफ जोड़ते हैं, और फिर हम उससे परेशानी इकट्ठी करते हैं और दूसरे से उपाय पूछा करते हैं। इसके बारे में बहुत छोटी सी घटना मुझे याद आती, आप खुद उसको देखिएगा। मैं बहुत हंसा था उस घटना को पढ़ करके, आप मत हंसिएगा, हंसना अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसी घटनाओं को सुन करके थोड़ी देर के लिए रोना भी चाहिए कि हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। अपनी गलतियों पर रोना कोई बुरी बात नहीं है, दूसरे की गलती पे हंसना बुरी बात है, लेकिन अपनी गलती पर रोना बुरी बात है। दूसरे की गलती पर हंस लीजिए थोड़ा सा, लेकिन वैसे ही अगर आप भी करते हो तो कहीं एक कोने में जा कर के रो लीजिएगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत पैसा इकट्ठा करा उसने, पूरी जिंदगी इकट्ठा, लेकिन आनंद नहीं मिला, क्योंकि डिपेंड था वो पैसे के ऊपर डिपेंड था। जिसने अपनी सुरक्षा पैसे मान रखी है वो व्यक्ति निश्चिंत कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। चीज़ों में जिसने अपनी सुरक्षा मान रखी है वो निश्चिंत कैसे हो सकता? कल चीज़ें नहीं रहेंगी तो बड़ी अनिश्चितता हो जाएगी, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और ऐसे ही उसके साथ था, लेकिन उसे ध्यान था कि कहीं कोई आनंद पाने की चीज़ है, वो पाई जा सकती है। वो अकिंचन नहीं समझता था, वो चाहता था कि आनंद मिले, लेकिन पैसे के साथ में आनंद मिल जाए ये उसका भ्रम था। चीज़ों के साथ आनंद मिल जाए, चीज़ों के साथ आनंद निकालना बहुत विरले लोगों की बात है। जो जितना डिटैच होते हैं उससे, वो चीज़ों के होते हुए भी उनसे आनंद निकाल लेते हैं, ये ध्यान रखिए। चीज़ें अफरात फैली रह जाती हैं उनके बीच भी। हमारे भगवान ही इस बात के प्रतीक हैं, सारा वैभव उनके नीचे पड़ा है, लेकिन चार अंगुल ऊपर वो अकिंचन, सब कुछ होते हुए भी ऐसे बैठे हुए हैं। लाद दो तुम पूरे मंदिर में सोना चांदी, पहना दो भगवान को, लेकिन वो तो ज्यों को त्यों वीतरागी बैठे रहेंगे। वो शिक्षा ये देते हैं कि सारा ताम झाम और उसके बीच में मैं, ये ताम झाम मेरे लिए कभी आनंद नहीं दे पाया। मैंने इसको जितना दूर हटाया उतना मैं, जितना मैं इससे दूर हटाया नहीं, ये भाषा उपयोग करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसे मैंने जितना दूर हटाया नहीं, ये तो मेरे पास निकट था ही, मैं इससे जितना दूर हट गया मुझे उतनी शांति मिल गई। वो गांव-गांव घूमा, लोगों से पूछता था वो कि आनंद मिलेगा कहीं पर, तो लोगों ने कहा हम भी उसकी खोज में हैं, आपको कहीं मिले तो आप खबर भेजना। किसी ने नहीं खबर भेजी, ना वो ना उसे मिला। कई गांव में गया, एक दिन तो थक गया तो गांव के बाहर ही उसने देखा कि एक फकीर सा आदमी बैठा हुआ है, तो वहां जा करके और उसने अपनी जो थैली वैली लिए था जिसमें हीरे जवाहरात बहुत भरे थे वो लेके चल रहा था, कि आनंद की खोज में लेके चल रहा था सारे हीरे जवाहरात। आनंद की खोज में निकला हुआ है, हीरे जवाहरात ले करके, देखना जरा मजा। तो उसने अपनी पूरी थैली वहीं पर पटकी और फकीर के पास बैठ गया कि आपको कहीं आनंद मिला, आपका उससे कोई परिचय है? तो फकीर मुस्करा दिया, ये नहीं कहा कि मुझे खबर नहीं है, मुझे नहीं मिला है। इसने सोचा कि ये भी चुपचाप बैठा, मैं भी चुपचाप बैठूं, और पोटली ऐसी रख के जैसे ही 2 मिनट उसने आंख बंद करके थका हारा था तो बैठा, इतने में उसने देखा कि वो फकीर आदमी ने वो थैली उठाई और दौड़ लगा दी। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो वो भागा उसके पीछे। वो फकीर थैली लिए आगे आगे भागता जाता था और ये पीछे पीछे भागता जाता। आनंद की खोज, सारे रास्ते जितने गांव के रास्ते थे सब में से वो फकीर गया। लोग देख रहे हैं, लोग पीछे होते चले जा रहे हैं कि ये मजा क्या, अभी एक माजरा क्या है, आखिर ये बात क्या होगी कि फकीर पोटली के लिए भाग रहा है और ये सेठ उसके पीछे पीछे भाग रहा है। एक एक गली में से निकलता था, पूरे गांव में घूम फिर करके आखिर में आया और वो थक गया था फकीर। उसने फिर पोटली पटकी और आराम से टिक के बैठ गया। वो सेठ जल्दी से दौड़ कर आया और उसने अपनी पोटली अपने कब्जे में करी। थके हारे फकीर ने कहा कि कुछ पूछ रहे थे ना, और तो नहीं कुछ पूछना? उसने कहा क्या पूछना, इतना परेशान कर दिया पूरा, इतना घुमा दिया, पूरे चक्कर लगवा दिया, अब कह रहे कि कुछ और तो नहीं पूछना? तो बोले नहीं, तुम समझ नहीं पाओगे, मैंने परेशान नहीं किया। मैंने कहाँ परेशान किया, तुम्हारी पोटली में तुम्हें परेशान किया, मैंने कहाँ परेशान किया? तुम ये जिसको अपने साथ लिए घूम रहे हो और जिस आनंद की खोज में निकले हो वो तुम्हारी परेशानी का पहला कारण है। मैंने तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया, मैं तो ये तुम्हें बता देना चाह रहा था कि जो चीज़ तुमने अपने हाथ में आनंद की खोज के लिए निकलने से पहले रख ली है वो चीज़ आनंद की खोज में बाधक है। हम जितनी चीज़ें अपने साथ आत्मानंद की प्राप्ति के लिए रखेंगे उतने आत्मानंद से दूर रहेंगे, और जितने हम आत्मा के निकट रहेंगे चीज़ों से उतने हम अपने आप दूर हो करके और अपने आप में स्वस्थ रहेंगे। कोशिश करिएगा, चीज़ें सारी पड़ी रहने दीजिएगा, आप क्षण भर के लिए उनसे अपने को जुदा तो करके देखिएगा, फिर देखिएगा कि कैसा आनंद आता है। बहुत ज़्यादा आने लगे तो फिर वेलकम कर रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। हम लोग 3 हैं, 5 हो जाएं, 10 हो जाएं तो अच्छा ही है। मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहूँगा उस फकीर की तरह, आपका बिल्कुल नहीं छुड़ा के दौड़ूंगा, आपको कहानी भर सुना रहा हूँ। नहीं, आपको एहसास दूसरे के अनुभव से हो गया, आपको ऐसे अनुभव में नहीं डालूंगा, पर आप गौर से देखिएगा कि जहाँ आप हैं वहाँ पर भी आप कितने स्वस्थ हो सकते हैं, मैं तो यही प्रक्रिया दूंगा आपके लिए कि आप कोशिश करिएगा कि जीवन को बेहतर जीना चाहते हैं तो चीज़ों की तासीर समझ करके और स्वावलंबन होने की कोशिश करिएगा, उन चीज़ों से अपने को थोड़ी देर के लिए अलहदा करके देखिएगा, ये घड़ी मेरी नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए करके देखिए। उस बीच में कोई छोटा सा बेटा आकर के उठा ले जाता है, ज़रा देखिए तो कैसा लगता है, ले गया ले गया, मेरी थी कब, देखूंगा 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के लिए एहसास करके देखिए, बहुत आसान लगेगा आपको कि वाकई में आनंद बहुत आता है। ऐसे आत्मचिंतन धर्म और कल आने वाले ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में भी फिर कभी बैठेंगे। ब्रह्मचर्य को कहा नहीं जा सकता, ना आखिंचन को कहा जा सकता, ये तो अनुभव करने की चीज़ें हैं। आकाश की तरह निर्मल हो जाना, जो जितना हल्का हो जाता है वो आकाश की तरह उतना निर्मल हो जाता है, वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। और हम कोशिश करें अपने जीवन में कि डिटैच हों, कोशिश करें हम अपने जीवन में कि क्षण भर के लिए स्वावलंबन, अपने आत्मा का ही आलंबन लेकर के पर पदार्थों के प्रति मुक्त होने की कोशिश करें। ऐसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि। मिथ्यात्म लाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो, अपर भास वेखो मानुषी बखानी है, सहु द्रव्य जान वेखो बंद वेद ध्यान वेखो, सपर पेछान वेखो परम प्रमाणी है, अनुभवताय वेखो जीवों के जताय वेखो, कहू न सताय वेखो भव्य और यानी है, जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो, सुख विस्तार वेखो यही